आज है 1 अगस्त दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। असम के नागरिकता रजिस्टर पर बीजेपी और विपक्ष का संसद में घमासान जारी।
हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, सोनिया जी से पूछना चाहते हैं कि बताइए घुसपैठ पर आपका स्टैंड क्या है।
असम के हिंदी भाषियों में नागरिकता रजिस्टर पर भारी रोष।
कई जो अनेक सालों से यहाँ रह रहे हैं और 100 साल पुराने भी व्यक्ति जो है उनके भी कईयों के नाम इसमें नहीं आए।
और अमेजन के जंगलों में 22 साल से अकेला रह रहा आदिम मानव सभ्य है या हम और आप।
एक आदमी अगर वाइल्ड बोर हंट करके आता है, सारे उस वाइल्ड बोर को शेयर करते हैं खाना खाने में। हमारी सोसाइटी में तो है नहीं, तो वो सिविलाइज नहीं है, हम सिविलाइज हैं।
पूरी चर्चा दुनिया जहान में, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के ड्राफ्ट यानी एनआरसी के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में गृहयुद्ध की स्थिति हो सकती है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की आलोचना की और कहा भाजपा लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि राजीव गांधी के सरकार के दौरान असम एकॉर्ड हुआ था जिसके तहत एनआरसी का काम हो रहा है। कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ता है यानी अधिक आयात शुल्क लगाने के लिए कदम उठाता है तो इसका उचित जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी मीडिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी कि ट्रंप चीन से आयात किए जाने वाले 200 बिलियन यानी 200 अरब डॉलर के सामान पर आयात शुल्क 25% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने 10% तक आयात शुल्क लगाने की बात की थी। इस मुद्दे पर समाधान खोजने के लिए अमेरिका और चीन के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही है। चीन के बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने कहा, चीन अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा और इसमें कोई बदलाव भी नहीं करेगा। अमेरिका का दबाव और उनका ब्लैकमेल हम पर काम नहीं कर सकेगा। उनके कदम के उत्तर में चीन भी खास कदम उठाएगा और हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए जो सही होगा वो करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया में बुधवार को अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 1907 के बाद से यहां दर्ज किया गया ये सबसे अधिक तापमान है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि लू चलने के कारण यहां कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी सोल में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। सोल निवासी शुंग योन म्योन बताते
हैं,
यहाँ स्थिति बहुत खराब है। मैं दिन के समय भी अपना पंखा बिना लिए कहीं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है। सच कहूँ तो मुझे गर्मी बेहद पसंद है, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे इस तरह के मौसम के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। ये थे सोल निवासी शुंग योन में उनके शब्द। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग का कहना है कि सत्ताधारी जानू पीएफ पार्टी ने संसद में अपना 2/3 बहुमत साबित कर दिया है, जिसके बाद अब सरकार देश के संविधान में बदलाव ला सकती है। इधर देश में राष्ट्रपति चुनाव भी हो रहे हैं जिसमें अब तक मिल रहे नतीजों के अनुसार जानू पीएफ पार्टी आगे चल रही है। विपक्षी एमसीडी ने चुनाव आयोग से चुनावों में धांधली की शिकायत की है। इधर यूरोपीय यूनियन के पर्यवेक्षकों के अनुसार चुनाव अभियान अब तक शांतिपूर्ण रहा है। जापान की सरकार ने कहा है कि वो सीरिया में अगवा किए गए अपने पत्रकार जाम्पे यासुदा को छुड़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इससे पहले सीरिया में कथित इस्लामी चरमपंथियों ने जाम्पे यासुदा का वीडियो जारी किया था जिसमें वो नारंगी रंग के कपड़े पहने घुटनों के बल बैठे नजर आ रहे थे और उनके इर्द गिर्द काले कपड़े पहने कुछ लोग देखे जा सकते थे। माना जा रहा है कि साल 2015 में सीरिया में अलकायदा का समर्थन करने वाले चरमपंथी गुट ने उनको अगवा कर लिया था। चरमपंथियों ने एक इतालवी व्यक्ति अलेक्जेंड्रो सेंड्रिनी का भी वीडियो जारी किया है जिन्हें 2 साल पहले तुर्की से अगवा कर सीरिया लाया गया था। सऊदी अरब से मिल रही खबरों के अनुसार यहां 2 जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। असम के नागरिकता रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC के मुद्दे पर आज दूसरे दिन भी संसद में हंगामा फूट पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर अब पश्चिम बंगाल भी इस मुद्दे की चपेट में आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। बनर्जी कह ही चुकी हैं कि NRC के कारण गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस पर BJP ने उनसे सवाल पूछा है। सोमवार को जारी हुए नागरिकता रजिस्टर के मसौदे में असम के 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कहा कि चूंकि अमित शाह का भाषण कल सदन में अधूरा रह गया था तो वो आज इसे पूरा करें। अमित शाह आज भी सदन में भाषण पूरा नहीं कर पाए। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाजाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर सकारात्मक बहस में शामिल होने की भावना न रखने का आरोप लगाया, मगर कुछ ही देर में ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री के निशाने पर फिर से आ गईं।
मुझे बताया गया कि ममता जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज सोनिया जी को मिलने वाली है तो हम सोनिया जी से सवाल करना चाहते, क्योंकि ममता जी की तो भूमिका मालूम है। उनका तो NRC को विरोध है, पहचान को विरोध है, घुसपैठियों के पक्ष में है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते, सोनिया जी से पूछना चाहते कि बताइए घुसपैठ पर आपका स्टैंड क्या है।
NRC की दूसरी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद से ही ममता बनर्जी और BJP नेताओं की इस मामले को लेकर ठन गई है। BJP के एक नेता ने तो NRC को पश्चिम बंगाल में भी लाने के संकेत दिए हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि NRC से 40 लाख लोगों के नाम निकाल देने से गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने के हालात बन रहे हैं। BJP का कहना है कि वो लोगों को उकसाने का प्रयास कर रही हैं। असम में BJP के यूथ विंग के 3 नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ इस मामले पर FIR दर्ज करवाई है। ममता बनर्जी कल से दिल्ली में हैं और पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं से मिलने के बाद वो आज दोपहर बाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से उनकी चर्चा में विपक्षी एकता और दूसरे मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जिस विपक्षी एकता की बात कर रही हैं उसकी रूपरेखा कैसी होगी तो वो बोली,
हमारा ये कहना है जिसमें जो स्ट्रांग है वो लड़े, जो पार्टी का जिधर में स्ट्रांग है परिस्थिति वो लड़े।
ममता बनर्जी ने हालांकि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन जैसे मुद्दों पर सीधे जवाब नहीं दिया और कहा कि गठबंधन सामूहिक नेतृत्व में काम करेगा। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
उधर असम में नागरिक रजिस्टर का मसौदा जारी होने के बाद आशंका और अनिश्चितता का माहौल है। यहां बरसों से रह रहे हिंदी भाषी लोग नाराज हैं। दरअसल असम में जारी हुई वैध भारतीय नागरिकों की सूची में सैकड़ों हिंदी भाषी लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि वहां राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश से आकर बसे लोगों का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। गुवाहाटी में स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा ने कुछ हिंदी भाषी लोगों से उनकी आशंकाओं के बारे में बात की।
लीगेसी डाटा मेरे पापा का है, उसके आधार पर मेरा नाम आया, उसके आधार पर मेरे बेटे का हुआ। अब ये सिचुएशन के अंदर में आप देखिए कि मेरा नाम NRC में आ गया लेकिन मेरे पापा का नहीं आया। हाँ तो कहाँ तरीके से हुआ? तरीके से तो हुआ ही नहीं है। तरीके से नहीं होने का रीजन तो वही ना, गवर्नमेंट का काम के अंदर अब कौन मालिक है वहाँ पे।
NRC की फाइनल सूची में अपने परिवार का नाम शामिल नहीं होने से गुवाहाटी के अशोक अग्रवाल बेहद खफा है। कुछ ऐसी ही नाराजगी जता रहे हैं डिब्रूगढ़ शहर में सालों से रहते आ रहे राजस्थान मूल के निरंजन बगड़िया।
मैंने सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मांगे थे सब दिया है, खाली मेरी एक बहू का नाम आया है और बाकी मेरा कोई का भी नाम नहीं आया। हाँ तुमको तो बहुत तकलीफ की बात है, मैं तो परेशान हूँ उस बात को लेकर के। सेकंड लिस्ट निकलेगी उसमें भी नाम नहीं आएगा, वो भी मतलब चिंता का विषय तो ही है ना।
बिहार के मुजफ्फरपुर से बरसों पहले असम के धुबरी शहर में आकर बसे लक्की नारायण रजक भी NRC को लेकर अपनी परेशानी कुछ ऐसे ही बयां करते हैं।
एक्चुअली हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं, बिहार मुजफ्फरपुर से। हाँ, और यहाँ पर मेरे पिताजी मैंने बाई बर्थ यहीं से एकदम है, बहुत छोटे से आ गए थे यहाँ पर। उनका 1951 का कागज भी, हम लोग NRC भी है, मेरा सिर्फ भाभी का नाम नहीं आया।
सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में प्रकाशित की गई NRC की फाइनल सूची में जिन 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिक नहीं माना गया है उनमें सैकड़ों लोग हिंदी भाषी हैं। जबकि असम में NRC को अपडेट करने का मकसद था कथित तौर पर बांग्लादेश से आए बांग्ला बोलने वाले हिंदू और मुसलमानों की शिनाख्त करना। यही कारण था कि असम समझौते की शर्तों के अनुसार 25 मार्च 1971 को आधार वर्ष रखा गया, क्योंकि इसके अगले दिन बांग्लादेश के आजाद होने की घोषणा हुई थी। ऐसे में अपडेट की गई एनआरसी से राजस्थान, बिहार, गुजरात, यूपी जैसे राज्यों से यहां आकर बसे लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। असम में बसे राजस्थान मूल के लोगों के सबसे पुराने संगठन पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रादेशिक अध्यक्ष मधुसूदन सिकरिया ने बीबीसी से कहा,
अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो सूचना आ रही है आ भी रही है। अभी तक तो गांव में, शहरों में अनेक स्थान पर अपने समाज के आदमी रहते हैं हिंदी भाषी, तो उनसे जैसे जैसे बात हो रही है पता चल रहा है कि कई जो अनेक सालों से यहाँ रह रहे हैं और 100 साल पुराने भी व्यक्ति जो है उनके भी कईयों के नाम इसमें नहीं आए हैं।
दरअसल असम में आए राजस्थान मूल के लोगों का इतिहास काफी पुराना है। आज भी प्रदेश के कई ऐसे कस्बे हैं जहाँ राजस्थान के लोगों द्वारा बनाए हुए सालों पुराने स्कूल कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जिस कदर हिंदी भाषी लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं उससे एनआरसी को अंजाम तक पहुंचाने वाले अफसरों की भूमिका जरूर सवालों के घेरे में आ गई है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और असम के बाद महाराष्ट्र, जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे मराठा संगठनों ने 9 अगस्त से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आज इन संगठनों ने जेल भरो का आह्वान किया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक इसका बहुत असर नहीं दिखा। कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने धरने दिए और चक्का जाम भी किया। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में बुधवार को मराठा संगठनों द्वारा कुछ महामार्गों पर चक्का जाम किया गया। पुणे सोलापुर हाईवे की यातायात पर भी इसका असर दिखाई दिया। हालांकि मराठा समाज के संगठनों द्वारा बुधवार को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन बेअसर रहा। एक प्रमुख आंदोलनकारी अमर मोरे ने बंद के असर की जानकारी दी।
जो पहला आंदोलन है वही कंटिन्यू है, जगह जगह पे चक्का जाम शुरू है। अभी आज पुणे सोलापुर हाईवे जो है तो पुणे सोलापुर हाईवे पे पूरा चक्का जाम है आज। उसके बाद में जो ग्रामीण इलाका है, रूरल इलाका, तो अभी रूरल इलाका में इसके पहले बंद नहीं किए थे, अभी रूरल इलाका में लोग बंद कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में भी।
चक्का जाम का कुछ कुछ असर राज्य परिवहन निगम की बस सेवा पर भी दिखाई दिया। पिछले दिनों बंद के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर पुणे नासिक बस सेवा अब भी स्थगित है। हालांकि मराठा आंदोलनकारी औरंगाबाद समेत कुछ शहरों और कई गांवों में धरने पर बैठे दिखे। औरंगाबाद के मराठा समाज के नेता रविंद्र काले पाटिल ने कहा कि मराठा लोग हिंसा नहीं चाहते।
हमारा पूरे राज्य में एक कमेटी का एक निर्धार जो चालू है, वो एक ही निर्धार है, वो बोले तो बैठे आंदोलन, ये आंदोलन बोले, ये आंदोलन मतलब धरना। हम लोग धरना पे बैठे, जगह जगह पे तहसील कार्यालय होगा, जिला अधिकारी कार्यालय होगा, या तो फिर उस जिले के जो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जहाँ जहाँ पुतला है के सामने लोग बैठे। जैसे आज लोग हम औरंगाबाद में अभी पिछले 14 दिन से हम लोग बैठे।
सोमवार के दिन पुणे के करीब चाकण इलाके में बंद के दौरान हुई आगजनी, हिंसा और पथराव के मामलों में पुणे की ग्रामीण पुलिस ने अनुमानित 4,000 से 5,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उधर आंदोलन के आयोजक इस हिंसा के लिए राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और दूसरे शहरों से आए लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि अगस्त क्रांति दिवस यानी 9 अगस्त से मराठा संगठन फिर आंदोलन तेज करना चाहते हैं। मराठा आंदोलन कार्यकर्ता शिरीष शिर्के ने बीबीसी को बताया,
ये पॉलिटिकल लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं इशू, क्योंकि क्या है महाराष्ट्र बोलो या ऑल ओवर इंडिया में, कर्नाटक बोलो, यहाँ पे जो 58-58 मोर्चे जो निकले है मराठा समाज के, ये पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक सोचने वाली बात है। उसे एक आदर्श लिया जा सकता है, ऐसे मोर्चे निकले है तो वो लोग, ये हमारे लोग ऐसा कोई हिंसाचार वाला काम नहीं कर सकते।
उधर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा युवकों के लिए मंगलवार को एक और नया ऐलान किया है। इसके तहत अब मराठा युवकों के बैंकों से 10 लाख रुपयों तक के कर्ज के आवेदनों को राज्य सरकार गारंटी दे सकती है, लेकिन इस फैसले पर भी मराठा संगठनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वे अब भी आरक्षण पर अड़ी हैं। हालांकि मराठा आरक्षण का फैसला अदालत में तय होना है, लेकिन आंदोलनकारियों में भावनाओं का उबाल देखते हुए 9 अगस्त से होने वाला आंदोलन वाकई शांतिपूर्ण रहेगा ये विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी नागपुर।
चीन और भारत, दो प्राचीन संस्कृतियां, दो पड़ोसी देश। चीन जहां अब भी महात्मा गांधी के प्रशंसक मौजूद हैं।
चीन
जहां शंघाई जैसे जादुई शहर हैं।
और पिछले 14 साल के अंदर जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारी डेवलप हुई है। और क्यों हुआ है? बिकॉज शंघाई हांगकांग से कम्पीट करता है।
और हिंदी फिल्मों के लिए दीवानगी भी।
कोई बता दे मैं हूं कहां।
सुनिए चीन की कहानियां। मैं विनीत खरे जल्द ही लेकर आऊंगा बीबीसी हिंदी रेडियो पर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। दक्षिण अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के संसदीय चुनावों में जानू पीएफ पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। उसने विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज को हरा दिया है। रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से।
चुनावी जीत की खुशी में जानू पीएफ पार्टी के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जिम्बाब्वे में सोमवार को हुए चुनावों में सत्तारूढ़ जानू पीएफ पार्टी पार्लियामेंट में सबसे अधिक सीटें जीतकर आगे चल रही है। हालांकि अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति इमरसन मनंगागवा की पार्टी सोमवार को हुए चुनावों में बहुमत लेकर आए। ये चुनाव इसलिए बेहद खास हैं क्योंकि ये पहला मौका है जब 37 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाले रॉबर्ट मुगाबे इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बुधवार देर शाम तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे। ZBC मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जिम्बाब्वे इलेक्टोरल कमीशन ने अब तक जो नतीजे घोषित किए हैं उसमें जानू पीएफ पार्टी को 110 सीट, MDC गठबंधन को 41 सीटें मिली हैं। संसद के निचले सदन में कुल 210 सीटें हैं। जानू पीएफ पार्टी के एक नेता टेरेंस मुकोपे ने कहा भी कि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुए।
ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई शख्स वोट करना चाह रहा था लेकिन वो वोट नहीं कर पाया। हर किसी ने वोट किया है। आप अभी हरारे में घूम आइए, आप पाएंगे कि हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये देश में स्थापित शांति का एक नमूना है।
अंगोला के विदेश मंत्री मैनुएल डोमिंगोज अगस्टो ने कहा कि ये चुनाव जिम्बाब्वे की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मुख्य विपक्षी पार्टी MDC के प्रमुख नेता मॉर्गन स्वांगिराई की फरवरी में हुई मौत का खामियाजा विपक्षी पार्टी को उठाना पड़ा है। उनकी मौत के बाद पार्टी कई छोटे छोटे गुटों में बंट गई और इस आपसी लड़ाई और बिखराव का नतीजा चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला। बावजूद इसके MDC पार्टी का कहना है कि उनके उम्मीदवार नेल्सन चामिसा ही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे।
रिपोर्ट आपने सुनी भूमिका राय से। और अब दुनिया जहान। ब्राजील के घने वर्षावनों में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक अकेला मनुष्य और दूर से उस अकेले मनुष्य की फिल्में उतारते कुछ और कथित सभ्य मनुष्य। ये तस्वीर सभ्यता की परिभाषा को सवाल के दायरे में ले आती है। जंगल में लकड़ी काट रहे आदिम जाति के उस व्यक्ति का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ। ये अपने कबीले का इकलौता सदस्य था जो 22 सालों से अमेजन घाटी में एकदम अकेला रह रहा है। मगर हमारी पृथ्वी पर इस शख्स जैसे और भी बहुत इंसान हैं जो घनघोर जंगलों में आदिम तरीकों से रहते हैं। आधुनिक दुनिया से अलग वर्तमान में ही मौजूद आदिम दुनिया की सैर करा रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श राठौर।
दुनिया जहां। ये आवाज है अमेजन के जंगल में लकड़ी काट रहे उस शख्स की जिसे दुनिया का सबसे अकेला आदमी बताया जा रहा है। पिछले महीने जब ब्राजील की सरकारी एजेंसी फुनाई ने इस आदमी का वीडियो जारी किया था तो दुनिया का ध्यान एक बार फिर उस दुनिया की तरफ चला गया जो आज भी आदिम तौर तरीकों से रहती है। ऐसे कबीले जो आपकी हमारी आधुनिक दुनिया से परिचित नहीं है। उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले हमारे आदिम पुरखों का था। ये ऐसी जनजातियां हैं जिनसे हम आधुनिक दुनिया के इंसानों ने संपर्क नहीं किया है। ये हैं अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। और इन ट्राइब्स में से अधिकतर ब्राजील से सटे अमेजन के वर्षावन में रहती हैं। ब्राजील में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि इन जनजातियों पर नजर रखी जाती है मगर दूर से।
ब्राजील की एक एजेंसी है सरकार की, उसका नाम है फुनाई। उसका ये काम है कि यहाँ पे जो ऐसी जनजातियां हैं जो अमेजन के जंगल में रहती हैं और उनको ट्रैक करती रहती हैं। तो उनका अनुमान है कि यहाँ करीब 113 के करीब ऐसी जनजातियां हैं जिनसे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है और इन 113 में से 27 कंफर्म हो चुकी हैं कि ये जनजातियां एग्जिस्ट करती हैं, इसके लोग वहां पे रहते हैं। तो ये फुनाई एजेंसी का काम है कि वो हमेशा लगातार इनकी ट्रैकिंग करते रहते हैं, उनके तरह तरह के उनके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके लोग हैं, वो जंगल में जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि हमेशा दूर से एक डिस्टेंस से उनको ट्रैक करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट में ना आए, लेकिन इस बात को जाने कि उनको किस तरह का जीवन वो रह रहे हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, किस तरह का खाना खाते हैं और वो इस तरह का काम करते रहते हैं।
70 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल दायरे में फैले अमेजन के वर्षावन ब्राजील समेत 9 देशों की सीमाओं में फैले हुए हैं। लगभग एक दशक पहले इन जंगलों से रिपोर्टिंग कर चुके बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी बताते हैं, अमेजन के वर्षावनों में एक अलग ही दुनिया बसती है।
4 दिन और 4 रात हम एक नाव में थे, रात में भी सफर करते थे और दिन में भी सफर करते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे और बीच बीच में अचानक बादल उमड़ घुमड़ के आते थे, जबरदस्त बारिश होती थी और फिर थोड़ी ही देर बाद एकदम साफ हो जाता था, यानी धूप निकल आती थी। और वहाँ जो जैव विविधता है जिसको हमने कुछ देखा भी, और जैव विविधता सिर्फ प्राणी यानी जो जंगली जानवर हैं उनमें ही नहीं, इंसान जो वहाँ रहते हैं उसमें इतनी विविधता है कि अभी तक बहुत सारे शायद ट्राइब्स का पता ही नहीं है।
अमेजन के जंगलों में रहने वाली इन आदिम जनजातियों के बारे में अगर पता चल भी जाए तो उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की जाती, एक दूरी बनाकर ही उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों उनसे संपर्क इसलिए नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे और आपके अंदर तो कई सारी बीमारियों के लिए टीकाकरण के कारण प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, मगर ये लोग आसानी से उन बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि इसी कारण अमेजन की ऐसी कई आदिम जनजातियां विलुप्त हो गई थीं।
पुर्तगीज लोग यहाँ पे 15वीं शताब्दी में ब्राजील में आए या साउथ अमेरिका में आए, पुर्तगीज और स्पेनिश, जब ये जनजातियों से संपर्क में आई तो वो काफी बीमारियों से काफी हद तक खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे काफी बीमारियां जो यूरोप में थी जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, कॉलरा वगैरह यहाँ पे नहीं था, तो उसकी वजह से वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ की जनजातियां खत्म हो गई।
इस तरह की आदिम जनजातियां भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में भी हैं, सेंटिनली और जारवा, लेकिन अब बाहरी दुनिया यानी हमारी दुनिया के लोगों के साथ उनका संपर्क बढ़ गया है, उन्होंने हमारे तौर तरीके अपनाना भी शुरू कर दिया है। जारवा लोगों की जीवन शैली को करीब से देख चुके और उनकी भाषा में शोध कर चुके इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार बताते हैं कि जीवन शैली में बदलाव लाना इन जनजातियों के लिए बेहद खतरनाक है।
एक तो है कि अगर ये अपने तरीके से रहेंगे तो वो जैसे रह रहे हैं तो वो रह सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आने से इनको डिजीज का प्रॉब्लम होगा पहला। दूसरा है कि इनकी जो रहन सहन है, खान पान है, वो जो हम लोग की दुनिया है उससे अलग है। खान पान बदलेगा तो रहन सहन बदलने से भी, परवेश बदलने से बीमारियां फैलती है। मैं देखा हूँ कि जब वो शुरू शुरू कांटेक्ट में आए थे तो जो कपड़ा पहनते थे उससे उनको स्किन डिजीज होना शुरू हो गया, चर्म इचिंग का प्रॉब्लम।
लेकिन अंडमान हो या अमेजन, जहां भी ये जनजातियां रह रही हैं, उनके लिए खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये है जमीन और संसाधनों के लालच के लिए जंगलों का सफाया। वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि अमेजन के जंगलों में रह रही आदिम जनजातियां किसानों, पशुपालकों और कॉरपोरेट्स के लालच की भेंट चढ़ रही हैं।
कि यहाँ पे ब्राजील में या पेरू में या बोलिविया में जंगलों को साफ किया गया है, यहाँ पे रेंचर्स होते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं जिनके पास हजारों हेक्टेयर की जमीन होती है और उन्हें जंगल काट के और जमीन पे कब्जा करने के लिए और खेती करने के लिए जंगलों को काटा है। उस जंगल को जब उन्होंने काटना शुरू किया तो उनका इन जनजातियों से सीधा सीधा संघर्ष हो गया और एक बड़ी संख्या में उनका नरसंहार हुआ 70 और 80 के दशकों में। फॉरेस्ट जो है, जंगल यहाँ के काटे गए हैं, उसके पीछे बड़े बड़े कॉरपोरेशन का हाथ है। जो डैम्स बनाए गए हैं ब्राजील में, क्योंकि ब्राजील में बहुत बड़ी नदियां हैं, उनमें एक बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, उसकी वजह से भी इन लोगों को काफी वहां से एक्सपेल किया गया है। काफी उनको अपने जो जंगल है अपने पानी भर गया है, कभी कभी उनको अपने स्थान छोड़ के जाना पड़ा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ना हम इन आदिम तौर तरीकों से रह रहे लोगों को मुख्य धारा में ले आए, यानी अपनी और आपकी इस दुनिया में जिसे हम सभ्य मानते हैं। आखिर क्यों इंसानों की एक अच्छी खासी आबादी को जंगलों में ही संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया है? क्या हम उन्हें अपने जैसा बनाकर उनका भला नहीं करेंगे? प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं कि इसके बारे में सोचना भी खतरनाक है,
क्योंकि अगर आप अचानक लाइएगा तो अचानक लाने का वही है कि फिर डिजास्टर होगा उनके लिए। हम भी जानते हैं कि हमारे भी पूर्वज जब हजारों साल पहले वो भी जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहां से हमको इस स्टेज में आने में कई हजार साल लगे। सिविलाइजेशन और सिविलाइज सोसाइटी का जो मतलब है, आइडियोलॉजिकली ये कॉलोनियल प्रॉब्लम है जहाँ ये शुरू हुआ था कि कॉलोनाइजर्स और यूरोपियंस आर मोर सिविलाइज्ड देन द कॉलोनाइज्ड पीपल, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट सिविलाइज और बारबेरियन और अनसिविलाइज का आया था। इनकी भी आप इनका देख लीजिए तो दे आर मोर सिविलाइज देन अस, उनकी कम्युनिटी है। अगर एक मतलब एक ग्रुप में 20 लोग 50 लोग हैं, उसमें एक आदमी अगर वाइल्ड बोर हंट करके आता है तो वो जो पूरे 20 लोग हैं उस ग्रुप में सारे उस वाइल्ड बोर को शेयर करते हैं खाना खाने में। हमारी सोसाइटी में तो है नहीं, तो वो सिविलाइज नहीं है, हम सिविलाइज हैं, हम तो झगड़ा कर लें पड़ोसी से खाना खाने के लिए।
जानकार मानते हैं कि इन अनकॉन्टेक्टेड या लॉस्ट ट्राइब्स को वैसे ही रहने दिया जाए जैसे ये हैं। वैसे भी जब बाहरी दुनिया के लोग इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो तीर और भालों से हमला करके प्रतिरोध करते हैं। वो बाहरी लोगों के प्रति आशंकित रहते हैं, और ठीक तो है, उनकी अपनी दुनिया है जहां वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। उनकी ज़रूरतें प्रकृति पूरा कर देती है, और हम अगर अपनी दुनिया की तुलना उनकी दुनिया से करें तो किसकी बेहतर है। इसलिए ठीक यही होगा कि अगर हम उनसे कुछ न सीख पाएं तो कम से कम उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें।
आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं, अपने साथ खेल की खबरें ला चुकी हैं। क्या हैं खेल की खबरें?
सबसे पहली बात तो आज यही है राजेश जी कि आज बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली जा रही है, और आज इंडिया मतलब भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला भी शुरू हो चुका है, और आज उसका पहला दिन है। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी 153 रन पर है इंग्लैंड की टीम, और 3 विकेट जो खो चुकी है। और इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और हम अगर बात करें जो टिके हुए हैं अभी मैदान पे, वो हैं जो रूट और बेस्टो, ये दोनों टिके हुए हैं। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो आर अश्विन ने 1 विकेट लिया है, जबकि मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए हैं। तो ये एजबेस्टन के ग्राउंड पर हो रहा है। और राजेश जी, सबसे खास बात यह है कि एजबेस्टन के ग्राउंड में अब तक 6 टेस्ट मुकाबले भारत खेल चुकी है और 6 में से 5 हार चुकी है, यानी कि बहुत टफ होने वाला है,
बहुत मुश्किल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए। तो हम अपने सुबह के कार्यक्रमों में आपको खेल की खबरों से और अपडेट रखेंगे, लेकिन फिलहाल चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। जिम्बाब्वे के हरारे में राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार की है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि सत्ताधारी जानू पीएफ पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है और अब सरकार संविधान में बदलाव कर सकती है। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश में गृहयुद्ध की स्थिति हो सकती है। भाजपा ने इसे गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ अधिक आयात शुल्क लगाने के लिए कदम उठाता है तो इसका उचित जवाब दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया में बुधवार को अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 1907 के बाद से यहां दर्ज किया गया ये सबसे अधिक तापमान है। बीबीसी समाचार।
तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। ये थे मुख्य समाचार। हमारी वेबसाइट bbchindi.com आपको दीन और दुनिया की खबरों से लगातार संपर्क में रखेगी। मैं राजेश जोशी अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। चलते चलते बता दूँ कि इस कार्यक्रम के स्टूडियो मैनेजर थे अजीत सारथी, और कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुँचाने में मदद की प्रशांत चाहल ने। तो सुबह नमस्कार भारत में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आइए bbchindi.com पर। नमस्कार।